परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। हालेलुया, आज आप आशीषित हैं क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका घराना आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। चिल्लाओ हालेलुया।
पहला यूहन्ना 5 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तेरी बाइबल बंद है तो स्वर्ग बंद है। मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बताया, कहता अगर लोगों के मुंह बंद है और बाइबल बंद है तो स्वर्ग उनके लिए बंद है। जिनकी बाइबल बंद है वो स्वर्ग खुलने के लिए मत बोलो। अगर आपकी बाइबल बंद है तो स्वर्ग बंद है। अगर आप चर्च में आ रहे हैं आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए जहां से परमेश्वर आपसे बात करते हैं। आमीन। जब लोग प्रोफेसी होते देखते हैं यहां पे, जैसे पिछले हफ्ते प्रोफेसी, उसके पिछले हफ्ते प्रोफेसी में हम गए जब परमेश्वर ने अलग अलग केसों को जाहिर किया तो लोग बोलते हैं परमेश्वर हमसे भी बात करे। जो लिखित वचन है आपने अभी तक पढ़ा नहीं और आप कहते हैं परमेश्वर आपके कानों से बात करे। जो लिखित वचन से प्रेम नहीं करता परमेश्वर उससे कभी भी बात नहीं कर सकते। इंग्लिश की बाइबल में लिखा व्हाटसोएवर, जो कुछ तुम उसके नाम में मांगोगे उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। कितनों को दिख रहा है सब? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगते हो वो तुम। इंग्लिश में लिखा जो तुम उसकी विल के अनुसार मांगते हो तुम उसे पाते हो। एक पिता जिसके 3 बच्चे हैं और इस पिता के पास 1 करोड़ का बंगला है, 1 करोड़ की जमीन है और 1 करोड़ का बिजनेस है, और उसके बेटे कितने हैं? 3। एक बेटे के हिस्से में इसने सोचा हुआ है कि मैंने इसको इसको बंगला देना है, घर देना है, इसको इसको जमीन देनी है और मैंने इसको बिजनेस देना है। अब आपको भी ये पता है कि जो कोई व्यक्ति अपने पिता के अधीन रहता है पिता उसे प्रॉपर्टी देता है। जो कोई उसके 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 मानने से बाहर होता है, उसका चाल चलन अच्छा नहीं होता, पिता उसे बेदखल करता है। कितनों को पता है ये बात? बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। अब इस बेटे को पता है कि मुझे बंगला मिलना है, घर मिलना है 1 करोड़ का, इसको पता है मुझे जमीन मिलनी है और इसको पता है मुझे बिजनेस मिलना है। कितनों को इतनी बात समझ आ गई? आप सब जा सकते हैं। उसी तरह जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाते हैं, किसी को परमेश्वर ने बुलाया एक पास्टर के रूप में कि वो सक्सेसफुल उसकी सेवकाई करें, किसी को बुलाया एक बिजनेसमैन के रूप में, किसी को बुलाया एक इवेंजलिस्ट के रूप में, किसी को बुलाया किसी दूसरे रूप में, और बाइबल में लिखा अगर आपको पता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। अभी मैं गहराई में जा रहा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर एक चोर चोरी करके आए और चर्च में आके अपना पैसा परमेश्वर के सामने रखे और परमेश्वर को बोले परमेश्वर आपकी बाइबल में लिखे कि जब हम कमाई का 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के घर में चढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारी कमाई पे बरकत देंगे, तो क्या वो चोरी का पैसा परमेश्वर उस पे उसको ब्लेस करेंगे या नहीं? अपना कौन कहता कि परमेश्वर ब्लेस करेंगे? हाथ खड़ा करो जिसे लगता है कि परमेश्वर उसे आशीषित करेंगे चोरी के पैसे से। कोई नहीं। किसे लगता है परमेश्वर उसे ब्लेस नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करो। आप सभी ठीक है, परमेश्वर उसे ब्लेस नहीं करेंगे। अब बाइबल में क्या लिखा है कि जब तू उसके भवन में पैसा लेके आएगा तो वो तेरे कमाई पे बरकत देगा, लेकिन वो कमाई जो उसकी गंदी कमाई है, जो चोरी करके किसी की बालियां छीन के वो चढ़ा रहा है, परमेश्वर उसको ब्लेस नहीं कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगेगा, सबसे पहले एक विश्वासी का काम है कि परमेश्वर की प्लानिंग उसकी जिंदगी में उसके लिए क्या है। जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया था, आप जानते 2012 में मैं इंग्लैंड में गया था, यूके में गया था, परमेश्वर ने कहा था दोबारा उन देशों में नहीं जाना, यूके जितने भी देश हैं, यूएसए अमेरिका प्रचार करने के लिए। कितनों को बताइए बात? जब भी मैं बाहर जाता हूं सिर्फ अपने आत्मिक पिता से मिलने के लिए जाता हूं। जब आपको यह नहीं पता, हर अच्छा दरवाजा अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और बाइबल में लिखा है जब तू उसकी इच्छा के अनुसार मांगेगा अपने पड़ोसी को बोलो तो तू पाएगा। आमीन। कई लोगों की परमेश्वर की इच्छा के लोगों की जिंदगी में कि वो फौरन ना जाएं, यहीं पे रह के परमेश्वर के काम को करें। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगेंगे, बाइबल में लिखा आप सारी
आपकी ब्लेसिंग फॉरेन में नहीं है या यहां पे नहीं है, आपकी ब्लेसिंग इस बात में है कि परमेश्वर ने आपको किन कामों के लिए चुना हुआ। यीशु मसीह ने कहा जब भजन संहिता आप पढ़ते 91 में है कि जो सर्वशक्तिमान के छाए स्थान में उसके ठिकाने में कितने कितने में पढ़ा वचन, पहला वचन पढ़ेंगे सब जन,
जो परम प्रधान के
छाए हुए स्थान बैठे रहे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना, कितनों ने पढ़ा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं, कितनों ने पढ़ा हुआ है। उसका मतलब क्या है, ठिकाना पाएगा मतलब यशव, यशव का मतलब परमेश्वर से एक स्थान लेना, एक जगह लेना, एक विश्वासी के रूप में और उसमें खड़े रहना। कितनों ने सुना था पिछले हफ्ते की दाऊद की एक जगह थी एक विश्वासी के रूप में जब परमेश्वर ने उसको पहली बार अभिषेक किया था, तब परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक नहीं किया था, अपनी योजना बताई थी कि तू आने वाले समय में एक राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है। लेकिन बाइबल में लिखा जब दाऊद का अभिषेक हुआ उसके बाद उसको धक्के खाने पड़े, उसको प्रॉब्लम उठानी पड़ी, उसके दुश्मनों ने उसका पीछा किया, उसको मारने तक गए। लेकिन बाइबल में लिखा जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तो तुम पाते हो। अगर दाऊद परमेश्वर की योजना से भाग जाता और फिर मांगता कि परमेश्वर मुझे शाऊल से बचा तो क्या वो बचता? कई बार परमेश्वर नहीं चाहते कि आप फलाने व्यक्ति से शादी करें क्योंकि वो मसीह के बाहर हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा और आप लगातार मांग रहे हैं। जब आप ऐसी चीजें मांगेंगे जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है तो सुरक्षा आपकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। कितनों को समझ आ रही, मैं गहराई में जाना चाहूंगा, अपने कान खुले रख लें। बाइबल में लिखा जो कुछ तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तुम पाते हो। आपकी सुरक्षा कहां पे है? परमेश्वर की इच्छा के अंदर आपकी सुरक्षा है। अगर ये तीन जो भाई थे इसको पता है कि अगर मैं पिता के अधीन रहा तो मेरा जो कब्जा है वो क्या है? बंगला। दूसरे को पता मेरा क्या है? जमीन। तीसरे को पता मेरा क्या है? लेकिन इनको अपने पिता के अधीन में रहना है। आमीन। कुछ लोग उनको पता है कि ये परमेश्वर की विल नहीं है मेरे लिए, ये अन्य जाति से लड़का है, अन्य जाति लड़कियां, परमेश्वर की मर्जी नहीं मैं इनमें शादी करूं, लेकिन वो अपने आप को समझाते कि बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। जब पतरस पहली बार परमेश्वर से मिला था उसने क्या कहा था परमेश्वर को? जब उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी उसने कहा था परमेश्वर मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। कितनों को याद है? और बाइबल में लिखा परमेश्वर का इनकार करने के बाद जब पतरस बहुत दर्द में था सबसे पहले, बाइबल में वो हिस्सा नहीं है लेकिन एक लाइन में वो साबित होता है कि सबसे पहले परमेश्वर जब मिले थे तो पतरस से मिले थे उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको फिर से जीवित करने के लिए आत्मा में। या बाइबल में ध्यान से पढ़ना, मैं शायद अगली मीटिंग में आपको खुल के इसमें समझाऊंगा। सबसे पहले परमेश्वर पतरस से मिले थे और अगर आप नोटिस करें दोबारा जब परमेश्वर पतरस से मिले नाव चलाने वक्त, जब परमेश्वर ने कहा था फिर से कि इस और जाल डालो तुम मछलियां पकड़ोगे, बाइबल में लिखा फिर मछलियां पकड़ी गई, तब पतरस ने क्या किया था? लिखा पतरस नंगा था और उसने अगोछा बांध के परमेश्वर की ओर छलांग मारी और परमेश्वर की ओर चला गया। कितनों ने पढ़ा हुआ है? बाइबल में लिखा है जब तुम्हें हियाव होता है, क्या लिखा वचन में कि जब तुम्हें हियाव होता है, हियाव का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को जब हौसला हो जाता है कि मेरे पाप माफ हो चुके हैं और मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर चुका हूं, लिखा फिर वो जो मांगता है उसे वो मिलता है। जब पतरस पहली बार परमेश्वर को मिला था वो जानता था कि उसकी जिंदगी में पाप है, वो परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं पापी हूं मुझसे दूर हो जा। दूसरी बार वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे माफ करके उसे फिर से खड़ा कर दिया और जब परमेश्वर का चमत्कार उसने देखा वो परमेश्वर की ओर भागा, परमेश्वर से दूर नहीं भागा। और बाइबल में लिखा जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देते हैं। परमेश्वर ने कहा था बाहर नहीं जाना, मैं यहीं पे तेरे इंतजाम करूंगा। क्या आपने देखा नहीं चर्च के सारे इंतजाम हो रहे हैं? कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आपको परमेश्वर की मर्जी के नीचे रहना, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा परमेश्वर की मर्जी के नीचे रहना। बाइबल में लिखा मेरा बोझ तुम उठाओ क्योंकि मैं मेरा बोझ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस वचन को समझते हैं? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा जाओ और अन्य जातियों को जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और अंत तक मेरी बातें जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो रोज सुसमाचार देने के लिए जाते हैं बाइबल में लिखा इस बहन ने क्या गवाही दी कि मैंने एक मन्नत मांगी परमेश्वर, मैं सारी उम्र तेरी सेवा तेरी गवाही दूंगी, मुझे छू और मुझे जगा कर। हन्ना पहले भी प्रभु से प्रेम कर रही, लेकिन जिस दिन उसने कहा था परमेश्वर अगर तू मुझे देखा तो ये तेरा होगा, तो परमेश्वर ने उसकी सुन दी। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? लिखा जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो वो तुम्हें देते हैं, इसलिए नहीं कि तुम अपने भोग विलास में उड़ाओ, तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाए, मेरी उसके साथ शादी हो जाए। हन्ना ने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा देगा मैं इसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। लोग कहते हैं परमेश्वर मेरा बिजनेस करोड़ों में चला जाए, लेकिन क्या करोगे अगर वो करोड़ों तुम्हें नाश कर देंगे तो? लेकिन अगर एक व्यक्ति कहे परमेश्वर मैं करोड़ों में जाऊं ताकि तेरे काम कर सकूं, आप अरबों में होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको इस बात को ध्यान से समझना है। बाइबल में लिखा अगर तुम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो। जब मैं मसीह में आया था मैं बीमार था, पर मैं परमेश्वर का परमेश्वर अगर आप मुझे छुए और चका करें सारी उम्र में आपकी सेवकाई में जाऊंगा। एक बहन थी आज से कुछ साल पहले, जब मुझे मसीह में आए सिर्फ एक दो साल हुए थे, मुझे मैसेज मिला कि एक बहन ने आत्महत्या कर ली, तेल डाला अपने से अपने बॉडी पे और अपने आप को जला लिया और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिए। उसके पिता मुझे जानते थे, उसके पिता मुझे मिले और मुझे बताया कि प्लीज आप हॉस्पिटल में आओ और उसके लिए प्रेयर करो। प्रभु ने मुझे कहा जाने के लिए और मैं चला गया। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, वो बोल भी नहीं सकती थी, उसका शरीर पता नहीं कितने परसेंट वो डेड हो चुकी थी एक तरह से, उसके हार्ट उसके पेट तक उसकी जलन जो होती है जो आग का असर था वो अंदर तक पहुंच चुका था। परमेश्वर ने कहा इसमें प्रार्थना कर, मैंने उसमें प्रार्थना की, बताया कि अगर तू प्रभु को अपना जीवन दे और उद्धार करता उसे ग्रहण करे, प्रभु को बोले परमेश्वर मुझे छू और चंगा कर, तो मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, प्रभु तुझे छुएंगे और चंगा करेंगे। मैंने उसे प्रेयर की, थोड़े दिनों देर के अंदर अंदर मुझे फोन आने शुरू हो गए कि वो लड़की ठीक होना शुरू हो चुकी है और डॉक्टर हैरान होना शुरू हो चुका है कि ये ठीक हो ही नहीं सकती इसके अंदर। सुनो ध्यान से, जब वो बिल्कुल बैठने योग्य होगी और खाने पीने योग्य होगी, मैं उसे मिलने के लिए गया। मैंने उसे पूछा कि परमेश्वर ने छुआ और चंगा किया, अब आपका जीवन जो है वो परमेश्वर का है, आपने परमेश्वर के लिए काम उसकी गवाही को उसके उसके पाप से दूर रहना प्रभु के कामों को करने। बोली नहीं 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 मेरी उम्र थोड़ी है अभी प्रभु के काम करने की, क्योंकि पहले जब इंसान प्रॉब्लम में होता वो होश में नहीं होता, जब होश में आता तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी थी शायद 23-24 साल। मैंने उसे कहा तेरा जीवन परमेश्वर का है, कहती नहीं नहीं नहीं, कहती मैंने जैसे ठीक होना है सबसे पहले मैंने अपने पति की सेवा करनी, मैंने जैसे ठीक होना है मैंने अपने पति की सेवा करनी और मैं प्रभु की सेवा करूंगी, टाइम आएगा जब मैं करूंगी। मैं चुप हुआ, मैंने आखिरी प्रेयर की, मैं वापिस गया। 2 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई, 2 दिन के अंदर चली गई, बिल्कुल ठीक हो गए। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं आप क्या 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 करते हैं, आप पाते हैं। कितनों को समझ आ रही है? आपकी ब्लेसिंग किस चीज में है कि आप अपने पिता के अधीन रहें? कितनों को समझ आ रही है? हर एक का हिस्सा सेम नहीं, हर कोई प्रॉफिट नहीं बन सकता, हर कोई अपोस्टल नहीं बन सकता, हर कोई पास्टर नहीं बन सकता, हर कोई असिस्टेंट पास्टर नहीं बन सकता, हर कोई वर्शिपर नहीं बन सकता। परमेश्वर ने अलग अलग रीति से आपको चुना, लेकिन आपकी ब्लेसिंग जो है वो आपकी बुलाहट के पीछे छुपी है। बहुत सारे लोग उनको पूछो वो बोलते हैं मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में इतने साल से नशा नहीं गया। उनको पूछो जितने लोगों को प्रॉब्लम है कि रोज कितने घंटे आप सुसमाचार सुनाने के लिए अपने घर से निकल के दूसरे लोगों तक जाते हैं, और बोले कि हम नहीं जाते। बाइबल में लिखा है दया कर ताजो तुझ पर दया की जाए, दिया कर तो तुझे भी दिया जाएगा, जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से मैं तेरे लिए नापूंगा। कितनों को आज सिंपल और गहरा वचन है आपको समझ आनी चाहिए जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी ब्लेसिंग किस चीज के पीछे है? हर एक व्यक्ति अपोस्टल बनने के लिए नहीं चुना गया, हर एक व्यक्ति असिस्टेंट होने के लिए नहीं चुना गया, हर एक व्यक्ति वर्शिपर बनने के लिए नहीं चुना गया, लेकिन परमेश्वर ने किसी न किसी को खास मकसद के लिए चुना है और उसकी ब्लेसिंग जो है वो उस मकसद के पीछे छुपी है। जब मैं परमेश्वर में आया था मैंने कहा परमेश्वर मैं एक अमीर इंसान हूं, लेकिन मैं अगर सेवा ना करूं तो सिर्फ पैसे से आपकी सेवकाई करूं, जहां जहां चर्चों को जरूरत है आपको मैं पैसा अपने बिजनेस से निकालूं, जिस जिस चर्च को जरूरत है मैं अपने पैसे से आपकी सेवकाई करता जाऊं। परमेश्वर ने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं चाहता हूं। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? मेरी आशीष मेरी बुलाहट के पीछे छुपी थी। आज एक व्यक्ति देखता नहीं कि इसके पीछे परमेश्वर की महिमा होती है या नहीं। अगर मैं ये काम करता हूं, ये स्टेप उठाता हूं, क्या ये परमेश्वर की मर्जी है या नहीं। आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर की आशीष है वो आपकी बुलाहट के पीछे छुपी हुई। अगर आप अपनी बुलाहट को पकड़ लेते हैं तो आपकी ब्लेसिंग उसके पीछे आपकी जिंदगी में आपको आती हुई अपनी आंखों से नजर आएगी। आमीन। परमेश्वर ने कहा जब तुम्हें हियाव होगा, हियाव होने का मतलब क्या है कि जब आपको पता होगा कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। आपको पता होगा आपकी आपका मांगना किसी इंसान के लिए नहीं है या अपनी इच्छाओं के लिए नहीं है या ऐश परस्ती करने के लिए नहीं। आप इसलिए मांग रहे हैं कि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। कितने लोग हैं जो रोज सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। जब बड़ी मीटिंग होती है हमेशा यहां तो आपको पता है हम पंफलेट देते हैं आपको मीटिंग में पंफलेट। वो इसलिए हम नेट पे भी डाल सकते हैं। हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हमारे पास। हम सिर्फ न्यूज़पेपर वालों के पास जाके उन्हें सिर्फ कुछ पैसे देके पूरे जलंधर के घर घर न्यूज़पेपर पहुंचा सकते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है आप कैसे आशीषित होगे अगर आप नहीं जाएंगे तो। आमीन। वो पंपलेट क्या है? आप अगर लोगों को वैसे बताएंगे कि यीशु मसीह प्रभु है तो वो कैसे विश्वास करेंगे? आपके पास कोई भी बहाना नहीं है जाने का। लेकिन जब मीटिंग का पंपलेट आपके पास होता है, आपके पास बहाना होता है कि ये मीटिंग है जी। कौन सी मीटिंग है जी? पूरा प्रचार कर दो जब ये पूछे कौन सी मीटिंग है। कितनों को समझ आ रही है? पूरी तरह बता दो किसकी मीटिंग है। परमेश्वर की मीटिंग है। परमेश्वर क्या करते हैं? जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर के वचन के पीछे छुपी है। लोग बोलते हैं परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है। अब लोगों के मन में यह सवाल होगा कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। कितनों के मन में यह है कि प्रभु ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? कितनों के मन में यह सवाल, अपना हाथ खड़ा करो। लोग पूछते हैं कि आपको पता था कि परमेश्वर ने आपको पास्टर के रूप में, अपोस्टल के रूप में, प्रोफेट के रूप में, जिस रूप में बुलाया आपको पता था, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने मुझे किस रूप में बुलाया। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर ने आपको किस रूप में बुलाया। अगर आप जानना चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करो। कितनों ने पढ़ा, एक अंधे को परमेश्वर ने पकड़ा, लिखा ये अंधा था, उसे पकड़ा, उसे हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गए। कितनों ने पढ़ा है? गांव के बाहर ले जाने के बाद लिखा उसको उस गांव में चंगा नहीं किया। गांव के बाहर ले जाने के बाद लिखा उसके सिर पे हाथ रखा और उसे पूछा तू क्या देखता है? कहता मैं देखता हूं जैसे पेड़ चल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा उसके सिर पे फिर हाथ रखा, अब बता तू क्या देख रहा है? कहता अब मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा हूं। रुको, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग मसीह में आते हैं उन्हें ये नहीं पता। अब लोग कहते हैं अब मुझे कैसे पता मुझे क्या करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मुझे कैसे पता कि परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है। एक बात को कान खोल के सुनो, कभी भी परमेश्वर पहले साल आपको कभी नहीं बताएंगे कि उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है। आप कभी एकदम से नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है। सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी है आपको अपने पास से, अपने पिछले जीवन से आपको बाहर लेके जाना, जिस तरह उस अंधे को परमेश्वर बाहर ले गए थे। आमीन। आपकी पुरानी जिंदगी, जो नशे वाले दोस्त हैं, जो पुरानी आदतें हैं, जो पुराना गंदा जीवन है, सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी है आपको हाथ पकड़ के उस गांव से बाहर लेके जाना। गांव से बाहर ले जाने का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपको परिवार से अलग कर देंगे। आप उसी संसार में रहेंगे, संसार के नहीं रहेंगे। आपका परिवार अगर मसीह में नहीं है, हो सकता है आप उसी परिवार में रहें लेकिन परिवार जैसे काम ना करें। कितनों को समझ आ रही? जब परमेश्वर लिखा उस हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके गए, उसके सिर पे हाथ रखा, उसका विजन खोला, पर वो पूरा नहीं था। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े कामों के लिए बुलाया, छोटे कामों के लिए बुलाया। मैं इतना जानता था बाइबल में लिखा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, शुरू से लेके अंत तक जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। मेरा काम क्या था शुरू में? एक बंदे को पकड़ना, उसे गवाही देना, परमेश्वर के बारे में बताना और जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसे पूरा करना। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर उसे बाहर ले गए, पहली बार हाथ रखने के बाद उसे नजर आया लेकिन थोड़ा। जब परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी से बाहर ले जाते हैं, आपकी पुरानी जिंदगी से, जब वो आपको छूते हैं आपको नजर तो आता है लेकिन पूरा नजर नहीं आता। आपको पता तो चलता है परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है, लेकिन वो विजन क्लियर नहीं है, वो दर्शन क्लियर नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपकी आंखों को पूरी तरह से खोल देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जान जाएंगे आप किन कामों के लिए बुलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितना को समझ आ रही है आज की बातें? जब परमेश्वर आपको पुरानी जिंदगी से बाहर लेके जाएंगे, आपकी आंखों को एक बार हाथ रखेंगे, आपको छुएंगे, आपको कुछ कुछ पता चलेगा, हाँ परमेश्वर मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। धीरे 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 वो आपको छूते जाएंगे और अपने दर्शन को आपकी जिंदगी में क्लियर करते जाएंगे। और जैसे ही परमेश्वर जान जाएंगे कि ये व्यक्ति जान चुका है, कितनों को याद है परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। कितनों को याद है? बाइबल पढ़ा करो, अगर बाइबल नहीं पढ़ते आपको वचन समझ नहीं आए, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपको 15 चैप्टर खोल के पढ़ाऊं और आपको सुना दूं। आपको जगाने के लिए बुलाया यहां पे, आमीन। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा था मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्यों कहा परमेश्वर ने सिद्ध होता जा? कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो बिना सिद्धता के आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। कुछ आशीषें ऐसी हैं जो बिना परफेक्शन के आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। कुछ आशीषें ऐसी हैं जब तक आप एक सर्टन लेवल तक नहीं पहुंच जाएंगे परमेश्वर कभी आपकी जिंदगी में रिलीज नहीं करेंगे। दाऊद कितने साल का था जब मसा हुआ? 15, 16, 17, 14। जब राजा बना कितने साल का था? 30 साल। क्या इंतजार कर रहे थे परमेश्वर? क्या जरूरत है परमेश्वर को 14 साल किसी को सफर करने की, 14 साल किसी को प्रॉब्लम में रखने की, 14 साल वो रोए करलाए इधर उधर भागे, अपनी मौत से भागे, बचता रहे, रोता रहे, करलाता रहे, क्या जरूरत है? परमेश्वर को बाइबल में लिखा है परमेश्वर तो भला परमेश्वर है, तो परमेश्वर को क्या जरूरत है ऐसे काम करने की? कुछ आशीषें आपको कभी नहीं मिलती जब तक आपका मसा उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा काम एक विश्वासी के जीवन से उसके अभिषेक को खत्म करना है। वो जानता है कि अगर दाऊद 14 साल का मसा हुआ था, हो सकता है अपनी गलतियों की वजह से जब ये मसा हो तो 60 साल का हो चुका हो। कितने दिन का सफर था जब परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा था कि चलो? कोई बोलता 3 दिन, कोई बोलता 40 दिन। कितने साल लगे थे? 40 साल। क्या ये परमेश्वर की मर्जी 40 साल लगे? क्या ये प्रभु की मर्जी थी 40 साल लगे? मेरे साथ बात करो सब जल्द, क्या प्रभु की मर्जी थी कि 40 साल में वहां पहुंचे? प्रभु की मर्जी क्या थी कि वो 3 दिन में वहां पहुंचे? लगे कितने साल? दाऊद चाहता तो हो सकता है वो 40 साल का होके मसा होता, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि जब तक मैं काबिल नहीं हूं, एक छोटा बच्चा अगर उसका बाप करोड़पति हो और उसके बाप की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो, जब तक वो बालिग नहीं होता उसको कभी प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। अब प्रॉब्लम क्या है? जब विश्वासी मसीह में आ जाते हैं, अब उन्हें मसे में बढ़ना है उन्हें पता नहीं, उन्हें रोज बाइबल के साथ समय बिताना है उन्हें पता नहीं। पूछो प्रॉब्लम क्या है? मेरे कार से नशा है, मेरे कार से प्रॉब्लम है, मेरे कार चेतना है, मेरा पति मैंने बुलांदा नहीं, मेरी पत्नी मैंने दुखी करती। अच्छा प्रेयर कितने करते हैं? अब वो नहीं करते। बाइबल कितनी पढ़ते हैं? मैं पढ़िया नहीं जी। फास्टिंग कितने करते हैं? भूख बहुत लगती है। एक छोटा बच्चा जो अपने मम्मी की गोद में है, उसकी मम्मी उसे खिला सकती है, अच्छे कपड़े दे सकते हैं, गाड़ी की चाबी दे सकते हैं, कोठी दे सकते हैं, बड़े काम दे सकते हैं, उसी तरह एक विश्वासी का जीवन है। आप पिता के हाथों में रह सकते हैं, वो आपसे प्रेम करेगा, आपको कपड़ा देगा, आपको खाने को देगा, बड़ी बातें कभी नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए आपको सर्टन आपको माइंड चाहिए, उस लेवल का दिमाग चाहिए, उस लेवल की आपको अभिषेक चाहिए जहां से आप सब चीजों को संभाल सकें। जब परमेश्वर विश्वासियों को बुलाता है उन्हें कभी कमजोर रखने के लिए, गरीब रखने के लिए, आपको अगर गरीब के रूप में बुलाया गया और आप 20 साल से अभी भी गरीब हैं, आप में बहुत कमियां, मैं आपको बता रहा हूं। आपको अगर गरीब के रूप में बुलाया और आप अमीर नहीं हो रहे, आप में कमियां, मैं आपको बता रहा हूं। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया उसने आपको ब्लेस करने के लिए बुलाया। लेकिन बाइबल में लिखा जब दाऊद को बुलाया गया, एक समय था जब दाऊद को पता था कि मैंने पिता की इच्छा में रहना और बढ़ना है आत्मा में, और एक समय आएगा जब वो 30 साल का हुआ परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया, पर पूरे इसराइल पे नहीं, सिर्फ यहूदा के घराने पे जो 12 गोत्रों में से एक गोत्र था। जब दाऊद इसराइल पे अभिषेक हुआ पूरे घराने पे, वो कितने साल का था? 37 साल का था, कितने साल लग गए उसको पूरा वो अभिषेक वो आशीष लेने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया था। इसीलिए पौलुस ने बाइबल में लिखा है कि बिना विश्वास के बहुतों का जहाज डूब गया है। उस विश्वास को पकड़ के रखो जिसे छोड़ के बहुतों का जहाज जीवन रूपी जहाज डूब गया है। पौलुस जानता था कि हमें रोज परमेश्वर के साथ अपने विश्वास के साथ चलने की जरूरत है। आमीन। हमें अपनी गवाही को बना के और मेंटेन रखने की जरूरत है ताकि शैतान का आप पे दाग ना चले। जब यीशु मसीह आपको बुलाते हैं आपको पहले दिन ही पता नहीं चलेगा परमेश्वर ने किन कामों के लिए आपको अपने पास बुलाया। सबसे पहले वो आपके पुरानी जिंदगी से आपको बाहर लेके जाएंगे। मुझे आज भी याद है जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, मेरे ऐसे दोस्त जो थे वो शराब पीते थे, परमेश्वर ने सब दोस्तों से मुझे निकाला और अलग कर दिया। मैं नहीं जानता परमेश्वर ने मुझे अपने पास क्यों बुलाया, लेकिन मैं वही करता जा रहा था जो बाइबल में लिखा हुआ है। लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं आज, प्रभु की विल क्या है, परमेश्वर की विल क्या है, लेकिन बाइबल पूछो पूरी पढ़ी है आज तक? नहीं जी। प्रभु की विल क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, पूरी बाइबल पढ़ी आज तक? नहीं जी। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, बाइबल पूरी पढ़ ली एक बार? नहीं जी। कितनों को समझ आ रही है? सबसे पहले प्रभु की इच्छा ही है, आप बाइबल को पढ़ो, लिखित वचन को पढ़ो जो परमेश्वर लिख चुके हैं बाइबल में। जो लिखित वचन को नहीं पढ़ रहा वो आवाज सुनने की इच्छा क्यों रखता है अपने मन में? परमेश्वर ने कहा था यर्मिया को अलग अलग भविष्यवक्ताओं को अलग अलग आज्ञाएं दी, और अगर आप ध्यान से समझे परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग छुपी है, जो परमेश्वर ने जिस ब्लेसिंग को सिर्फ आपको देने के लिए अभिषेक किया। एक व्यक्ति उसने दर्शन देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है और वह स्वर्ग में गया और वहां बहुत से गिफ्ट पड़े हैं। उसने प्रभु ने कहा ये गिफ्ट देख, ये उन लोगों की गिफ्ट है जिनको मैंने अपने पास बुलाया, लेकिन वो मेरी आवाज को समझ नहीं सके और उनका गिफ्ट अभी तक मेरे पास पड़ा है, उन तक पहुंचा नहीं अभी तक। परमेश्वर ने कहा ये गिफ्ट मेरे पास पड़े हैं और लोगों तक पहुंचे नहीं। आप नहीं जानते परमेश्वर ने बड़े कामों के लिए आपको अपने पास बुलाया, लेकिन पहली इच्छा क्या है? आप पवित्रता में रहें। कितने लोग हैं जो रोज सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं? कोई भी नहीं, बहुत कम, उनके पास टाइम नहीं है। अगर हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं उसके वचन को सबसे पहले पूरा करो। आमीन। वो धीरे धीरे आपकी आंखों को एक बार खोलेगा, फिर आपकी आंखों को पूरी तरह खोलेगा, आपको साफ साफ नजर आएगा। तब तक आपको परमेश्वर की मर्जी के नीचे बने रहना है, तब तक परमेश्वर जब तक परमेश्वर आपके विश्वास को परख के आपको योग्य नहीं समझ लेते कि आपको वो बड़ी आशीष बड़ी सेवकाई दें। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते बोलते हैं हमने सेवकाई शुरू की है, आप प्रार्थना करना प्रभु से बढ़ाए, मैं कब प्रार्थना करूंगा। महीने बाद आते बोलते हैं हमने वीजा अप्लाई किया अमेरिका का, प्रेयर करना हमें वीजा मिल जाए। मैं कब क्या चाहिए पहले बताओ, सेवकाई चाहिए कि वीजा चाहिए? क्या चाहिए, सेवकाई चाहिए कि वीजा? अगर बाहर चले जाओगे सेवकाई कौन करेगा? क्या चाहिए पहले अपने आप में क्लियर करो, अपने मन को परमेश्वर पूछो आपको क्या चाहिए, आपको क्या मांगना चाहिए। होली स्पिरिट आपको बताते हैं कि आपको क्या मांगना चाहिए। आमीन। इस धरती बाइबल में लिखा है इस धरती के ऊपर आसमान के नीचे हर एक चीज का डिफरेंट समय है, अलग अलग समय है जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए रखा हुआ है। जब एक विश्वासी समय नहीं समझ पाता वो कंप्लेंट करना शुरू करता है परमेश्वर को, फिर वो मर कुड़कुड़ाना शुरू करता है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर आपका बोझ मेरा, मेरा बोझ आप उठा लें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। कितनों को समझ आ रही है? एक बात को याद रखो, जितने प्रोफेटिक आप सुनते हैं, जितने आप हीलिंग देखते हैं, वो किसके लिए? ताकि आपको वचन की गहराई में लेके जाया जा सके। आमीन। वो चंगाई किसके लिए? ताकि आपको समझ आ सके कि प्रभु यीशु मसीह अगर असंभव काम कर सकते हैं तो मुझे उसके वचन को सुनना है, और उसके वचन के पीछे मेरी आशीष छुपी है। आमीन। मैं चाहता हूं एक बार जरूर पढ़ो फिर उत्पत्ति 17 उसकी एक आयत को।
जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
बस अपने पड़ोसी को बोलो सिद्ध होता जा, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। ध्यान से मेरी बात को सुनना,
आपके लिए जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखी है उसके बीच में और आपके बीच में एक फासला है, वो फासला सिद्धता का है, परफेक्शन का है। कितनों को समझ आई मेरी बात? आपको क्या लगता है कि अगर परमेश्वर यहोवा सबको दे सकते हैं तो अब्राहम को जल्दी क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? कितने साल का था अब्राहम अपने घर से निकला था? 75 ईयर्स का था वो, 75 साल का। और अब वो कितने साल का हो गया वचन में? 99 साल का। 24 साल के बाद अगर परमेश्वर आपके सामने फिर उपस्थित हो जाए और कहे डर मत, मेरी उपस्थिति में चलता जाओ, सिद्ध होता जाओ, तो आप कहेंगे परमेश्वर सिद्धता सिद्धता छठो मेरे मुंडा देव जल्दी मेनू मेनू मुंडा देव फलाने बहुत आने पै गए मेनू। परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। आमीन। कितनों को याद है जो सिद्ध होना चाहते हैं उनकी निशानी आपको बताता हूं, वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जो सिद्ध होना चाहते हैं वो अपने काम से मतलब रखें। याद रखो वो कई बार क्या होता है, जब दाऊद ने पाप किया था याद रखो बैतशेबा के साथ, बाइबल में लिखा जब उसने पाप किया नतान नबी उसके पास आया, उसने कहा मैंने पाप किया मैंने पाप किया और पछताया। नतान नबी ने कहा तू ना मरेगा क्योंकि यहोवा ने माफ कर दिए। माफ करने का मतलब ये नहीं उसे पाप का अफेक्ट नहीं होगा, माफ करने का मतलब तू मरेगा नहीं, प्रभु तुझसे दूर नहीं होंगे, उसका आत्मा तुझसे दूर नहीं होगा, लेकिन लिखा तू माफ हो चुके। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि दाऊद उस लड़की को बुलाने नहीं गया था, उसके लोग उसे बुलाने गए थे। कितनों ने पढ़ा ये बात? दाऊद ने अपने लड़कों को भेजा था उस लड़की को बुलाने के लिए। कई बार जिस व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति पाप करता है और इसको पता है उसने पाप किया, फिर ये व्यक्ति उसके खिलाफ बोलता है। अब उसे ये नहीं पता कि दो दिन के बाद उसने नबी से माफी मांग ली, प्रभु से माफी मांग ली, और ये अब भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये श्रापित होगा, जो पाप किया हुआ है वो धर्मी ठहराया जाएगा। कितनों को समझ आई मेरी बात? एक व्यक्ति को नहीं पता जो दूसरा व्यक्ति पाप करके माफी मांग चुके हैं और आप अभी भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आप उसे सिद्धता तक कैसे पहुंचोगे? दाऊद ने क्यों नहीं मारा शाऊल को? चाहे परमेश्वर का आत्मा शाऊल से जा चुका था, दाऊद ने कहा ये यहोवा का अभिषिक्त है, मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसलिए दाऊद के दिल से परमेश्वर प्रेम करते थे। आमीन। बाइबल में लिखा जब 99 साल का अब्राहम हो गया, परमेश्वर प्रकट हुए बोले मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा, जो आशीष मैंने तुझे बोली है मैं तुझे दूंगा, पर परफेक्शन में आता जा, सिद्धता में आता जा, सिद्ध होता जा। आज एक विश्वासी को ज्यादा बड़ी अपनी जगह आएगी, उसे इस बात की चिंता नहीं कि वो सिद्ध कैसे हो। अगर एक विश्वासी इस बात की चिंता में जाए मैं सिद्ध कैसे होना है, आप देखेंगे आप पीछे क्या है, अपने आप आपके पीछे आ रही है, आपकी बरकतें अपने आप आपके पीछे आ रही। ऐसा विश्वासी मैं विश्वासी नहीं गिनता जो रोज टाइम ना निकाले परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाने के लिए, जो रोज बात ना करे परमेश्वर की, जो रोज सुसमाचार सुनाने के लिए ना जाए, वो विश्वासी असली विश्वासी नहीं। 99 साल का होने के बाद इमेजिन करो कि 75 साल का जब था वो परमेश्वर ने कहा था आ चले, कहता चलो परमेश्वर। 99 साल का होने के बाद परमेश्वर बोले डर मत अब्राहम, सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा। अब्राहम के और आम विश्वासियों तो बोले परमेश्वर क्या सिद्ध होता जा, 99 का हो गया पता नहीं होना है कि नहीं होना, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। एक विश्वासी का काम है अपनी जिंदगी में सिद्ध होना, परफेक्ट होना, ताकि परमेश्वर की मर्जी, उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीष जो आत्मिक ज्यादा है आपकी जिंदगी में फ्लो कर सके। आमीन। अगर आप आत्मिक है तो आपको ये चिंता होगी आज आपने प्रार्थना की या नहीं की, आज आपकी प्रेयर कम हुई, आज आपने बाइबल नहीं पढ़ी, इस हफ्ते आपने रोजे कम रखे, आपको ये चिंता ज्यादा होगी। ये नहीं कि प्रभु ने अब तक ये काम नहीं किया, प्रभु ने अब तक वो काम नहीं। एक असली विश्वासी जानता है उसका काम सिर्फ परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है, बाकी काम परमेश्वर का उसको सारे सुख देना। आमीन। अगर एक अच्छा पति अपनी पत्नी को सुख दे सकता है तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारा मुख्य पति है, चीफ हस्बैंड है वो। क्या वो हमें हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? क्या जो परमेश्वर अपना इकलौता बेटा हमें दे सकता है क्या वो हमें चंगाई नहीं देगा? बाइबल में लिखा सिद्ध होता जा,
99 साल का होने के बाद परमेश्वर ने बोला सिद्ध होता जा, अब्राहम को नहीं पता सिर्फ एक साल रह गया उसकी आशीष में, लेकिन वो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और माना। आमीन। कितनों को समझ आई आज की बातें? एक विश्वासी का काम क्या है? परमेश्वर में सिद्ध होना, उसके पीछे पीछे चलते रहना, परमेश्वर की इच्छाओं को खोजना, उसके सुसमाचार को लेके जाना। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? एक व्यक्ति फैसला करता है, परमेश्वर मैं तेरी महिमा करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा सुसमाचार लेके जाने के लिए तैयार हूं। मान लो एक व्यक्ति ने नशे छोड़े हैं, वो दोबारा कभी नशे नहीं करेगा इस बात के लिए कि लोगों ने मेरी गवाही को सुना है, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है, मैं प्रभु की महिमा के लिए खड़ा हूं, मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना चाहता है। कुछ मसीह लोग सिर्फ होंठों से प्रभु को महिमा देना चाहते हैं जबकि उनका दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। आज चाइना का राष्ट्रपति इंडिया में आया, किसको पता है? सबको पता है, काफी लोगों को पता है। जब वो चाइना से आया, क्या वो साइकिल से आया, स्कूटर पे आया, बस पे आया? अब चाइना इंडिया साथ साथ है, कार पे आया, किस पे आया? प्राइवेट प्लेन पे, जो बहुत बड़ा प्लेन है। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, आपको ब्लेस करना परमेश्वर की जिम्मेवारी बनता है। जब एक देश का राजदूत, अमेरिका का राजदूत अगर टूटे जहाज पे आए तो अमेरिका की बेइज्जती है कि राजदूत की बेइज्जती? जब इंसान परमेश्वर का सच्चा सेवक होता है तो परमेश्वर उसकी केयर करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। आमीन। जब एक सच्चा इंसान खड़ा होता है वो कभी नहीं कहता परमेश्वर अगर ये दुख हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, अगर ये हल ना हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। एक सच्चा इंसान अपनी जिंदगी के हर एरिया से परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसे यह पता है कि अगर मैं गलत रिलेशनशिप में जाऊंगा तो प्रभु के नाम को महिमा नहीं मिलेगी, अगर मैं गाली निकालूंगा तो प्रभु के नाम को महिमा नहीं मिलेगी। लोग जानते हैं मैं एक सेवक हूं, लोग जानते हैं मैं प्रचार करता हूं। जब आप प्रभु की जिम्मेवारी ले लेंगे, प्रभु की निगाह आप पे आएगी, परमेश्वर जानते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। और जब शैतान आपको नाश करने के लिए आपकी जिंदगी में आएगा, परमेश्वर उसे छिड़केंगे और जाने के लिए बोलेंगे। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? होता क्या है, हमने अपनी जिंदगी से प्रभु की महिमा कभी नहीं की, हमने कभी दिखाया नहीं कि परमेश्वर हम अपनी जिंदगी जिम्मेवारी पे तेरी महिमा के लिए देते हैं। जब आप उसके असली राजदूत बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको भेजेंगे ईश्वरीय इंतजामों के साथ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपने दिखा दिया परमेश्वर को कि आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए, ऐसे लोग जिनसे मैंने पैसे लेने हैं सिर्फ लड़ने में मिल जाएंगे, मैंने लड़ना ना मंजूर करके पैसे मरवा लिए। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप सेक्रीफाइस करते हैं परमेश्वर के लिए, बलिदान करते हैं कि आपकी पर्सनल जो प्रेयर लाइफ है वो कभी खराब ना हो। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन कभी खराब ना हो। किसी ने जानबूझ के आपको कुछ बोल दिया पंगा लेने के लिए, आप फिर भी चुप हैं क्योंकि आप जानते हैं आपका बोलना आपको मसीह की लाइन से बाहर कर देगा। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए खाना पीना बोलना चलना शुरू करते हैं तो वो आशीष आपके चेहरों पे, आपके सिरों पे होगी जो कभी नहीं आई होगी आप पे। आमीन। जब मैं बाहर जाता हूं, लोग जब मेरी ओर देखते हैं वो बोलते हैं कि कुछ अलग है। मैं बोलता हूं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना ही पता है कि मैं एक अलग परमेश्वर को जो जीवित है मैं उसे मानता हूं, उसी की आशीष मेरे जीवन के ऊपर है। आमीन। अगर आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए खड़ी है, आप सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं। 2011 में मैं सेवकाई में फुल टाइम आया हूं, 2011 तक मैं काम करता रहा हूं। जब चर्च में 2500 लोग आते थे, जब संडे इतने लोग आते थे, जिससे भी ज्यादा लोग आते थे, 2500 भी ज्यादा आते होंगे, 5000-7000 लोग भी आते होंगे, तभी भी मैं काम करता था। और एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने अपने बिजनेस के साथ साथ परमेश्वर के काम को छोड़ा हो, एक भी दिन नहीं। एक भी दिन ऐसा नहीं जब मैंने प्रचार ना किया हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जब मैंने गवाही ना दी हो। हालेलुया। अपनी लाइफ को यूथ है जो यंग लोग हैं बना के रखो। किस मुंह से आप प्रपोज करते हैं लड़के लड़के को, अगर आपके दिल को पता आप क्रिश्चियन लोग हैं, आपको पता है पवित्र आत्मा आपके दिल में बसता है, किस मुंह से आप कहेंगे? किस मुंह से आपको शर्म आएगी कि प्रभु आपको देख रहे हैं? किन हाथों से आप शराब पिएंगे, आपको शर्म आएगी प्रभु आपको देख रहे हैं? आप एक शैतान आप पे हंसता है, परमेश्वर को बोलता है ये देख तेरे बंदे, ये देख तेरे लोग चुगलियां कर रहे हैं, मार रहे हैं दूसरे को, नशे कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, फेसबुक पे गंदी पिक्चरें देख रहे तेरे लोग। और ऐसे भी जिन्हें शैतान कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि ये देख मेरे लोग ये कैसे परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोग बनो कि परमेश्वर आप पे घमंड करे। परमेश्वर शैतान को आपकी गवाही दे, देख ऐसा व्यक्ति मैंने धरती पे कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। आप लड़ाई में याद रखो, जो जो प्रार्थना करने वक्त सो रहा है उसकी जिंदगी सो जाएगी एक दिन, मैं आपको बता रहा हूं। जिसको पता नहीं वो लड़ाई में है, वो एक दिन हारेगा और रोएगा। जिसको पता है वो लड़ाई में, उसे लड़ना है, उसे जीतना है। आप हंसने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज मैं आपको जगाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं प्रोफेसी में जा रहा हूँ, परमेश्वर एक भाई के बारे में मुझे बता रहे, वो यहीं पे है, उसके उसके लाइफ के बारे में। मेरी बात को ध्यान से सुनो, वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। आमेन। आपका मुंह घर बंद है, प्रार्थना नहीं है, आपकी बाइबल बंद है, स्वर्ग बंद है आपके लिए। अगर स्वर्ग को खोलना है बाइबल को खोलो, स्वर्ग को खोलना है मुंह को खोलो और प्रार्थना करो। अगर यहाँ पे 1,000 प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास अभी आए और मैं उनसे पूछूं कि इस प्रेयर के लिए, इस प्रार्थना, इस जो आपने लिखा है, इस काम के लिए आपने रोज कितने घंटे प्रेयर किए, तो एक भी आगे नहीं आएगा जिसकी प्रार्थना 3 घंटे से ज्यादा होगी। मांगो तो दिया जाएगा। आमीन। जब प्रार्थना नहीं है परमेश्वर जवाब कैसे देंगे? अगर रोज हम सुसमाचार को लेके नहीं जाएंगे, प्रभु का वचन नहीं पूरा करेंगे, तो परमेश्वर कैसे हमें ब्लेस कर पाएंगे? वो ब्लेस हमें करेंगे, खाना पीना चलता रहेगा, बच्चा जो है वो उसकी माता उसे छोड़ती नहीं। अगर वो मंद बुद्धि भी हो, उसे वो खाना पीना और खिलाना और कपड़े देना कभी नहीं छोड़ती। बड़ी चीजों को लेने के लिए बड़ी जिम्मेवारियां चाहिए आपको। आमीन। अपने हाथों को उठाओ।